नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशिया जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफर है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है। एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
जी बिल्कुल, और जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने यहाँ पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पे दूसरे, पहला गेम तो
बराबरी का रहा, काफी
21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूं कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के एक दो वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोनों पर उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली है। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर वन जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इश्यू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफी अनुभव है और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं। बट ओवरऑल जिस लय में दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी इस साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुदूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
सऊदी एथलेटिक्स ग्रांड प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश ने पुरुषों की 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेश कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावनाएं इस खिलाड़ी में नजर आती है, जो कि स्प्रिंटर, अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है, तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है, अब हमें इंतजार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पे उभर रहे हैं। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है 100 मीटर 200 मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहां हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के लिए 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने टी20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरु और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
हम हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स, नो डाउट। वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, जाहिर तौर पे ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से, 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहां से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं। और उन्होंने सही कहा कि उनकी देखरेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस टीम के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहां बहुत कम लोग हैं, बाहर से जो जाके लोग वहां बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहां के भी लोकल अब खेलने लगे हैं और फाइट देती है वो टीम
जी।
तो इसकी चर्चा उन्होंने की और जाहिर तौर पे उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहां के क्रिकेट प्लेयर्स को।
जी बिल्कुल, और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब आईपीएल की भी कर लेते हैं, जहां कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। एलएसजी के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने एलएसजी ने बेहद आसान बना दिया और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद सीएसके अंक तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की रात थोड़ी मुश्किल कर दी।
हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो बाकी के 2 मैच बचे हैं तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफी रोमांचक हो चला है, गुजरात और केकेआर के बीच।
जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
जी बिल्कुल, तो गुजरात की नजर होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
हाँ बिल्कुल, केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15वां ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है। और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं, बट ओवरऑल जो अब ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहाँ मैच हुआ था तकरीबन उसके 1 महीने बाद यहाँ पर मैच चल रहा है और एक वहां जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पे आप कम नहीं आ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।